हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 21। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिगृह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिगृह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिगृह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिगृह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिगृह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शब्दों का अर्थ, निराशीर यत चित आत्मा। निराशीर मतलब फल की आकांक्षा से रहित या निष्काम। चित यानी संयमित, यत यानी संयमित, और चित आत्मा का मतलब होता है मन तथा बुद्धि। त्यक्त सर्व परिगृह, त्यक्त मतलब छोड़ देता है, सर्व मना समस्त, परिग्रह मतलब स्वामित्व भाव। शारीरम केवलम कर्म, शारीर अर्थात प्राण रक्षा के लिए, केवल अर्थात सिर्फ मात्र जीने के लिए, कर्म यानी कार्य। कुर्वन नापनोति किल्बिषम, कुर्वन मतलब करते हुए, ना अपनोति मतलब ना मना कभी नहीं, आपनोति यानी प्राप्त करता है, किल्बिषम अर्थात पाप पूर्ण फल। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्ण वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता उल्टा रहता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही वह उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। इसी से रिलेटेड अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। कृपया मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। शब्दों का अर्थ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यदृच्छा यानी जो स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है, क्या लाभ, जो भी उसको खुद ब खुद फायदा या लाभ से संतुष्ट हो जाता है, वो संतुष्टो यानी संतुष्ट हो जाता है। द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्व से अतीत। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जय पराजय, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। जो भी स्वतः उसको प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट हो जाता है। द्वंद्वातीतो विमत्सर, विमत्सर मतलब ईर्ष्या से रहित होता है। समह सिद्धाव सिद्धौ च, सम यानी स्थिर चित्त, सिद्धौ सफलता, असिद्धौ असफलता में। कृत्वापि न निवर्तते, कृत्वापि का मतलब होता है करके अप्यद्यपि, यानी कार्य करके भी। न निबध्यते, न यानी कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है या बांधता है। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्य नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न आधार लेता है, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता सर्दी गर्मी अथवा दुख सुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साद्विजातं सहगण रघुनाथ पीतं तं सजीवम्। सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीकांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிந்தா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கீ ஜெய ஹோ. भगवान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म किस प्रकार होता है, क्योंकि अर्जुन क्या चाहते हैं कि मुझे कार्य ना करना पड़े, मैं युद्ध का कार्य नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे अपराध लगेगा. लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नहीं, आप अगर युद्ध नहीं करोगे तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि ना करके भी तुम कर्म करोगे, यानी कि तुम्हारे मन में वह चलता रहेगा, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण. तो आप हृदय में तो उसके स्मरण करोगे, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं. मिथ्याचारी चुच्यते, मिथ्याचारी कहलाओगे. तो अभी भगवान अर्जुन को ये क्लियर कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि किस प्रकार आप कार्य करते हुए भी अकर्मणी रहोगे, यानी कार्य करोगे लेकिन उस कार्य का सही या गलत, यानी अच्छा या बुरा, कोई भी परिणाम आपको टच नहीं करेगा. तो भगवान ने पहले भी श्लोक नंबर 19 और 20 में भी इसी के विषय में बताया, यस्य सर्वे समारंभम, यस्य सर्वे समारंभम काम संकल्प वर्जिता. क्योंकि वो सारे कार्य करता है लेकिन वो कामना से रहित होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता. क्यों इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता? ज्ञान दग्ध ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान अग्नि से उसके कर्म करने की, वह जैसे कर्म इच्छा से करते ना कि भाई मैं ये कार्य करूं मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसको तो इतना ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जब आत्मा हूं तो मैं कोई भी कार्य अपनी संतुष्टि के लिए कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं, तो मुझे भगवान की संतुष्टि के लिए क्या कार्य करना है. तो ज्ञान की अग्नि से उसके समस्त कर्म जो है उनके फल समस्त भस्म हो जाते. तमाहु पंडितम बुद्धा, ऐसे ही व्यक्ति को पंडित लोग बुद्धिमान कहते हैं. और आगे हमने पढ़ा श्लोक नंबर 20 में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, यानी कि फल के अंदर जितनी आसक्ति है उसकी वो सारी त्याग देता है. और जब फल के अंदर आसक्ति को क्यों त्यागता है? क्योंकि फल के अंदर जो आसक्ति होती है वही तो कर्मों का बंधन बनती है, उसी के कारण तो जन्म मरण का चक्कर होता है. अगर फल के अंदर कोई आसक्ति नहीं है तो वो कार्य किसके लिए कर रहा है? केवल आगे हमें बताएंगे शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन इसको हम करते हैं नित्य तृप्तो निराशय. जो भी उसके पास होता है उससे एकदम सेटिस्फाई होता है, कभी भी वो ये नहीं सोच रहा है कि ये भी प्राप्त होना चाहिए, ये भी प्राप्त होना चाहिए. नहीं, जो भी कृष्ण कृपा से उसको मिल रहा है उससे वो संतुष्ट रहता है और किसी जीव पर आश्रित नहीं रहता है कि वो मेरी सहायता करे, ये मेरी सहायता करे, क्योंकि उसको पता है कि भगवान है सहायता करने वाले. तो निराश्रय कर्मणीय कर्मणीय भी प्रवृत्तोपि, कर्मणीय भी प्रवृत्तोपि. देखो यहाँ पर भी भगवान ने क्या कहा, वो अपने कर्म में लगा रहता है. इसमें भी क्या बोला था कि सर्व यस्य सर्वे समारंभा, वो बहुत सारे कार्य करता है लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी इच्छा कर्म के फल में नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा भाव क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान ने 2.47 में बताया था कि कार्य सारे करो लेकिन उसके सारे फलों को मुझे समर्पित कर दो. तो ये वही व्यक्ति के बारे में भगवान बताते हैं, कर्मणीय भी प्रवृत्तोपि, वो कार्य में लगा रहता है, नैव किंचित करोति सः, लेकिन फिर भी ऐसा है कि उसने कोई कार्य नहीं किया, मतलब उसको कोई भी कार्य बंधन में नहीं फांसेगा. आज का श्लोक हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा, निराशीर यत चित्तात्मा. निराशीर यहाँ पर फिर से फल की आकांक्षा से रहित, यानी कि उसको ये इच्छा होती नहीं है कि मैं एक कार्य करूंगा तो मुझे उसका यह फल मिलेगा, यानी वो निष्काम कार्य करता है। अब कार्य तब बंधन का मतलब बंधन का कारण बनता है जब आप उस कार्य से कोई कामना रखते हो। अगर आप उस कार्य से कामना रखते हो कि मुझे ये अच्छा काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो या फिर मेरे पुण्य अर्जित, तो बस वो कार्य क्यों कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। मेरे सारे कार्य केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। तो श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो कर्म करते समय कभी भी शुभ और अशुभ फल की आशा नहीं रखता है। उसको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ये कार्य करूं उससे मुझे अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। बस उसके माइंड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं और वो किस तरह से, वो कार्य भी अभी इस तरह से ना, किसी के मन में ऐसा भी होता है कि फिर तो अगर कार्य में कोई इच्छा फल की इच्छा नहीं रखनी है, उससे हम कर्म बंधन से छूटेंगे नहीं। फिर अगर हम अपराध भी कर रहे हैं, कोई अगर अपराध भी कर रहा है तो भी फल की तो कोई इच्छा नहीं कर रहा है ना, तो अपराध का भी फल उसे नहीं, लेकिन वो कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, वो ज्ञान अधिग्रह कर्म, उसकी जो ज्ञान अग्नि से उसकी सारी इच्छाएं उसने अपने आप समाप्त नहीं की है, उसको इतना ज्ञान हो गया है गुरु और शास्त्र और साधु के उसके अंडर में रहकर वो कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि उसका जो दिल करता है वो करता रहता है और फिर बोलता है कि भाई मुझे तो इसमें कोई आसक्ति है नहीं, इसलिए मैं कर्म फल में नहीं फंसूंगा। नहीं, वो ज्ञान अग्नि दिग्ध कर्माणि, उसके सारे कर्म जो है उनके फल इसलिए नष्ट हो गए हैं क्योंकि उसने ज्ञान की अग्नि में उनको भस्म कर दिया। उसकी अक्कर इतनी प्योर हो गई है, उसकी बुद्धि इतनी प्योर हो गई है कि वो अब कोई भी कार्य कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके करता है। आगे यहाँ पर लिखा है त्यक्त सर्व परिग्रह, जितने भी उसके कार्य हैं, यानी परिग्रह का मतलब होता है स्वामित्व की जितनी भी इच्छा है कि ये करूंगा तो मुझे यह लाभ मिलेगा, यह प्राप्ति होगी, तो स्वामित्व की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब का त्याग कर देता है। और क्यों करता है फिर कार्य, जब उसको फल की इच्छा नहीं, स्वामित्व की इच्छा नहीं, तो कार्य क्यों कर रहा है? तो भगवान अगली लाइन में बताते हैं, शारीरम केवलम कर्म। शारीर का क्या मतलब होता है, यानी उसकी चेतना ऐसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कार्य कर रहा है कि वो उसका शरीर निर्वाह हो सके, वो जी सके बस। अब देखिए जो है ना, जिस भी वर्ण में है वो ब्रह्मचारी है तो उससे कार्य करना है कि उसको शास्त्र अध्ययन करना है, और अगर वो ग्रस्त है तो उसको कोई कारोबार करना है, अगर वो है ना वानप्रस्थ है तो भी उसको कार्य करना होता है, और अगर जैसे वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा, वेद अध्ययन करने पड़ेंगे और यज्ञ करना पड़ेगा, अगर क्षत्रिय है तो उसको शस्त्र उठाना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। ये सारे कार्य वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको जो शरीर मिला है तो उस शरीर से रिलेटेड उसको कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। नियत कर्म को छोड़ता नहीं है, कार्य उसको करना पड़ता है, वो सारे अपने नियत कर्म कर रहा है। क्यों? शारीरम केवलम कर्म, क्योंकि वह कर्म जो है वो उसके शरीर निर्वाह के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और अब यहाँ से कोई पूछ सकता है कि क्षत्रिय तो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कार्य नहीं कर रहा है ना, क्योंकि क्षत्रिय क्या करता है, युद्ध करता है, फिर उसको युद्ध करने के बाद राज्य, भगवान बोलते ना तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तुम अगर है ना जीत जाओगे तो फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी की राजाई आपको प्राप्त होगी, और अगर हार जाओगे मर जाओगे युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये शरीर निर्वाह के लिए नहीं हुआ, लेकिन भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपका कर्तव्य यही है तो तो आपको अपना कर्तव्य पालन करना है, तो उसमें आपके लिए कभी भी हानि नहीं हो सकती है। अगर आप केवल ये सोचकर कर रहे हो कि ये मेरा कर्तव्य है, तो वो कभी आपको बांधेगा नहीं। शारीरम के तो जो भी आपका वर्ण और वर्ण का अनुसार है, जैसे आप ग्रस्त हो तो आपको ग्रस्त के कर्तव्य करने हैं, अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको क्षत्रिय के कर्तव्य करने हैं। उसमें आप अगर अपने शरीर के अनुसार जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो आपके नियत कर्म है वो कभी भी आपको फंसाएंगे नहीं। और इसी बना शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति केलविषम, और अगर वो करते रहेंगे नाप्नोति यानी कभी भी पाप नहीं लगेगा उससे। अगर क्षत्रिय है उसका धर्म है अधर्म की रक्षा कर, अधर्म का विनाश करना, तो क्षत्रिय भले कितने ही अधर्मियों को नाश करता है तो उसको कभी भी उसका अपराध नहीं लगता। बल्कि अपराध तो कब लगता है, जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, क्योंकि आपको यह ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है, आपके लिए यह कर्तव्य है कि आपको अधर्म का नाश करना। लेकिन अगर वो क्षत्रिय होते हुए भी अपना कार्य नहीं करता है तो उसको और भी ज्यादा पाप लगता है। कार्य करके वो भले हत्या भी कर रहा है तो भी उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो किसी भी कार्य में अपना स्वामित्व नहीं देखता। वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये कार्य अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मन तथा बुद्धि जो है वो पूर्णतया वश में होते हैं। त्यक्त सर्व परिग्रह, ये इससे पहले निराशीर यत चित आत्मा, चित यत चित आत्मा यानी उसका जो आत्मा है यानी उसका मन तथा बुद्धि, आत्मा का चित आत्मा का ये बताया, वो दोनों उसके वश में होते हैं। अब वश में होते हैं यानी कि वो ये नहीं सोचता है कि मेरा मन प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ या शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। उसके पास इतना ज्ञान होता है कि वो अपने आप को भगवान का दास समझता है, और क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ तो मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे यहाँ पर उदाहरण दिए। एक तो श्री प्रभुपाद ने कहा जैसे हाथ से हम यदि कोई कार्य करते हैं तो हाथ को कभी भी ये इच्छा नहीं होती है कि ये कार्य करके मैं संतुष्ट होऊंगा। क्यों? क्योंकि हाथ उस शरीर का हिस्सा है, अंश है, तो उस वो सारा दिन भी भले मेहनत करता है। हाथ अगर किसी के घर में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हाथों से पूरे पूरा दिन कार्य करते हैं, कोई भी देखते हैं हम, लेकिन हाथ कभी भी अपनी संतुष्टि के बारे में नहीं सोचता है। वो क्या करता है, इसलिए कार्य करता है क्योंकि उससे शरीर संतुष्ट होने वाला है, उससे जो धन मिलेगा या उससे जो कुछ मिलेगा उससे पूरा शरीर संतुष्ट होगा। उसी तरह से अब एक पुर्जा है, जैसे मशीन का एक पुर्जा श्री भगवान जी बता रहे हैं, वो एक पुर्जा जब मशीन में लगा हुआ होता है तो मशीन का अंश होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है उसको मतलब पुर्जे को भी ठीक रखने के लिए कभी उसको ऑयल में रखते हैं, कभी उसको साफ करते हैं, कभी उसको है ना क्लीन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पुर्जे की संतुष्टि हो रही है। वो किस लिए कर रहे होते, क्योंकि अगर वो ठीक से चलेगा तो मशीन कार्य करेगी, है ना। तो वास्तव में भक्त जब कोई कार्य करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, वो कोई भी कार्य अपनी तृप्ति के लिए नहीं कर रहा होता है। श्री प्रभुपाद ने तो यहाँ तक बताया कि वो पशु के समान होता है। जिस तरह अगर स्वामी जो होता है वो अपने पशु जो होता है वो अपने स्वामी के आधार उसकी कृपा पर आधारित होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई अगर पशु का स्वामी होता है वो बहुत क्रूर होता है तो स्वामी उस पशु को मार डालता है, परंतु वो कभी भी विरोध नहीं करता। उसी तरह से भक्त के जीवन में भले कितने ही दुख भी आते हैं तो वो भगवान के सामने जाकर खड़ा होकर ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ इतना मुझे दुख दे रहे हो। कभी कभी ऐसा नहीं कहता कि कृष्ण तुमने मेरा भाग्य लिखने के बाद एक बार पढ़ तो लिया होता कि इसके अंदर इतने सारे कष्ट हैं, मैं कैसे भुगतूंगा। तुम भगवान के, वो अपने आप को भगवान का दास समझता है और हर चीज जो भगवान उसे दे रहा है स्वतः प्राप्त होने वाली समस्त चीजों को, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, फिर भगवान उसे क्या दे रहा है, यानी उसे अपने कर्मों के अनुसार क्या मिल रहा है और किस तरह से शुभ मिल रहा है, अशुभ मिल रहा है, और उसको क्या कार्य करना है। वो धन संग्रह के विषय में भी नहीं सोचता कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर, बस अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। वो कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और ऐसे भौतिक जितने भी पाप कर्म उसको नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती है। और आगे श्री प्रभुपाद भगवान क्या बताए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा मतलब जो भी उसको स्वतः लाभ मिल रहा है, यानी कि ईगरनेस नहीं होती है ये मिले ये मिले, यदृच्छा मतलब जो जो उसको स्वतः लाभ मिल जाता है, खुद ब खुद हो रहा होता है, जो कृष्ण की प्लानिंग से जो उसको मिल रहा होता है उसी लाभ से वो संतुष्ट होता है। यानी कि अब यदृच्छा लाभ संतुष्टों का मतलब ये हुआ कि अगर उसको स्वतः लाभ मिल रहा है तो उससे भी संतुष्ट हो रहा है, और अगर स्वतः हानि हो रही है तो उससे भी वो दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि हानि भी तो फिर, क्योंकि उससे तो अपनी इच्छा होती ही नहीं है ना कि ये प्राप्त हो ये प्राप्त हो, उसे तो केवल भगवान को संतुष्ट करना, तो वो कार्य करता है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, किसी भी द्वंद्व से अतीत है ना, अच्छा है या बुरा है उसको डिसाइड नहीं करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो ये सोचता है कि जो प्लानिंग कृष्ण ने की है वही बेहतर है। अब वो अच्छी है तो उससे भी संतुष्ट है, अगर वो बुरी है दुनिया की नजर में हो सकती है, उसको तो द्वंद्व अतीत है, उसे तो दोनों दिखते, सिर्फ और सिर्फ मर्सी दिखती है उसको कि ये कृष्ण की मर्सी है, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की करुणा है, तो फिर वो कभी भी उससे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। विमत्सरः, ईर्ष्या किसी से भी नहीं करता है, मतलब किसी को ज्यादा मिल रहा है, कोई अच्छा सुखी हो रहा है तो ऐसा नहीं सोचता कि देखो वो कितने मतलब अच्छे हैं, कितने सुखी हैं, मुझे भगवान ने इतना नहीं दिया, तो उसमें जरा भी ईर्ष्या नहीं होती है। क्यों? समह सिद्धा व सिद्धौ च, अगर उसे सफलता भी प्राप्त होती है असफलता भी प्राप्त होती है तो भी उसको समान लगता है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कितनी मेहनत की उसके बावजूद भी मुझे सक्सेस नहीं हुआ, और उसने तो इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की, वो कितना ज्यादा उन्नत हो गया। जो भी सिचुएशन है उसमें एकदम इक्वल रहता है वो। कृत्वा भी न निबध्यते, वास्तव में भगवान हमें बार बार याद करा रहे हैं कि आपको याद क्या करना है कि आप कार्य करते रहो और वो आपको बंधन में ना फांसे, ऐसा आप कैसे कर सकते हो। तो भगवान वास्तव में हमें कर्म के बंधन से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कर्म का बंधन बना रहेगा तब तक हमें इस संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का बंधन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो करते हुए भी उसमें बंधेंगे नहीं, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। कृत्वा भी न निबध्यते, यानी श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी प्रयास नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मुझे इस शरीर को निर्वाह करने के लिए ये भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, एसी चाहिए, ये अधिक प्रयास नहीं करता। बस यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यानी कम प्रयास से जो प्राप्त होता है उसी से वो संतुष्ट हो जाता है, और अपने आप होने वाले लाभों से वो बिल्कुल संतुष्ट हो रहा होता है। वह ना तो मांगता है और ना ही आधार लेता है किसी से भी, उसको इच्छा ही नहीं होती है ना। इच्छा होगी तभी तो हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, इच्छा होगी तभी तो हम एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करता है। कार्य वो, श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, यानी कि जो उसको कार्य मिला है, जो ड्यूटीज है उसके ऊपर, वो यथा सामर्थ्य मतलब जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो करता है, लेकिन मेंटली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है कि नहीं इसका मुझे ये रिजल्ट होना, रिजल्ट की ओर नहीं कर्म की ओर वो अपना एकदम परफेक्टली कार्य करता है, बिल्कुल यथा सामर्थ्य जितना अच्छे तरीके से वो कर सकता है, और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता है। कार्य में कभी भी सुस्ती नहीं करता है कि मैं कार्य ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस छोड़ दो, मुझे ये सब करना ही नहीं है, कार्य करता है और उसके बदले में जो उसको प्राप्त होता है उसे संतुष्ट हो जाता है और वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। यानी कि जो जीविका का मतलब होता है कि मुझे अगर ये प्राप्त हो जाएगा तो ही मैं ना सुखी रह सकूंगा, ये प्राप्त होना चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, ये नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मुझे जब कृष्ण ने ये शरीर दिया है तो उसकी निर्वाह के लिए जो जो वस्तुएं की आवश्यकता है वो भी वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जीविका को, शरीर को चलाने के लिए भी उसको एक्स्ट्रा ये नहीं करना पड़ता है, नहीं ये भी हासिल करूं, ये भी हासिल करूं, ये भी हासिल करूं। और अगर उसकी वो इतनी सारी इच्छाएं रखेगा तो फिर क्या करेगा वो, उसको दूसरों की सेवाएं करनी पड़ेंगी, है ना, प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े। लेकिन वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि भगवान की सेवा उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान की सेवा के लिए संसार की द्विविधता से विचलित नहीं हो, विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए ये नहीं सोचता कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, या फिर आज मुझसे ये सेवा। भगवान की सेवा में कुछ भी द्वैतता से, द्वैतता लिखा हुआ है ना यहाँ पर, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, ये नहीं सोचता है कि यह सरकमस्टेंसेस मुझे भगवान की सेवा करने से रोक रहे हैं। सरकमस्टेंसेस जो भी हो वो भगवान की सेवा करने से कभी भी विचलित नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पाकिस्तान है, हम लोग है ना भक्ति को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, भक्ति हम यहाँ से जाएंगे तो इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे, ये करें। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यह सरकम, कोई बोलेंगे कि भाई अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो फिर मैं सोलह माला शुरू करूंगा, कोई बोलते हैं कि भाई अभी स्टडी कर रहे हैं तो फिर, यानी कि जो सरकमस्टेंसेस हैं हमें क्या करना। भगवान का भक्त क्या सोचता है कि जैसा भी ये समय है, एज इट इज, जैसा भी है उस एज इट इज समय को मैं कैसे कृष्ण भावना भावित बनाऊ, किस तरह से भगवान की भक्ति करूं। कोई बोलेंगे भाई एग्जाम हो रहे हैं अभी नहीं कर सकते, तो ये क्या, ये बहाने हैं, ये द्वंद्व है, ये तो संसार में चलेगा ही चलेगा, एक खत्म होगा तो दूसरा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो फिर है ना मैं भगवान की भक्ति करूंगा। भक्त क्या सोचता है कि मैं हर समय और हर सिचुएशन में भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हूँ, उसमें वो कभी भी झिझकता नहीं है। और अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में संभाव रहता है। ये नहीं सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे मुझे सफलता नहीं, मुझे करना है फिर जो भी उसको उसका रिजल्ट मिलता है उसके लिए भी वो परेशान नहीं होता, लेकिन मुझे करना है, मुझे अपना कार्य करना है, मुझे मंगल आरती करनी है, मुझे संध्या आरती करनी है, मुझे शास्त्र अध्ययन करना है, उसमें कितनी सफलता मिलती वो नहीं, बस मुझे अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। और ये लक्षण किस तरह से उसको उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होगा। जब तक उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो इस स्टेज पर नहीं आएगा। फिर आगे भगवान बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि दिव्य ज्ञान तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, जब तुम किसी शुद्ध गुरु के पास जाओगे। तो इसी अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अभी तो भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार तुम कार्य करो और कार्य के बंधन में तुम्हें नहीं फंसना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।